ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के नेट जीरो लक्ष्य को गति देते ई मोबिलिटी क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्रा।
भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप पर रिपोर्ट जारी हुई है। आज हम इसी ई मोबिलिटी रोडमैप के समग्र आयाम पर सुर्खियों में बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं एनर्जी और पावर एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी। नरेंद्र जी नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप रिपोर्ट लॉन्च हुआ है, यह क्यों खास है और इनमें किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है?
देखिए, अगर है जो रोडमैप की चर्चा हुई है, जो लॉन्च हुआ है, उसमें मुख्यतः चूंकि अब भारत जो है बड़ी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक हमारे देश में ज्यादातर जो हम व्हीकल्स देखते हैं या तो वो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, और कुछ व्हीकल्स CNG से भी चलते हैं। अब चूंकि ऐसा माना जाता है प्रदूषण होता है, तो सरकार की कोशिश है कि हम तेजी से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह से, अर्थात ऐसे वाहन जो विद्युत से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। और उस दिशा में अगर पिछले 4-5 सालों की आप देखें तो भारत काफी आगे आया और हमने काफी इसमें प्रगति करी, और आज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और ग्रोथ से भी ज्यादा हमने ये देखा है कि भारत में तमाम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, या कम से कम उनकी एम्बिशन वो होती है। और खासतौर से युवा हैं, शहरों के अंदर मैं अक्सर देखता हूं कि वो आइडियोलॉजिकल या अपने एक आइडियलिज्म के कारण जो है कुछ कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ बात तो कर भी रहे हैं। तो ये रिपोर्ट इस बात को देखती है कि भाई इसके लिए जो है, क्योंकि एक चुनौती है और भारत जो है बहुत बड़ा देश है और आने वाले समय में जो है ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो आबादी है बढ़ने वाली है। ये रिपोर्ट आई है कि जो मुख्य जो 4 एरियाज हैं जिसके अंदर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने अपने देश में बढ़ाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसलिए क्योंकि अगर हम ये देखते हैं आज की तारीख में ज्यादातर तमाम भारत की टेक्नोलॉजी में बाहर से लेके आ रहे हैं, कई चीजों का जो प्रयोग करते हैं वो भी बाहर से आ रही हैं। क्योंकि ये भारत सरकार चाहती है कि 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, भारत चाहती है वहां पहुंचते पहुंचते हमको जो है ऊर्जा की भी आजादी मिल जाए, जिसको एनर्जी इंडिपेंडेंस कहते हैं, कि हमें विदेश से कोई चीज मंगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आज जो है हम 85-86% तेल आयात करते हैं, हम गैस आयात करते हैं, सोलर पावर की इक्विपमेंट आयात करते हैं। सरकार चाहती है ये सब बंद हो जाए, हम अपने देश के अंदर सब चीजों का निर्माण करें और बाहर से हमको ईंधन या इस तरह की चीजें लाने की आवश्यकता ना हो। उसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब ये है कि जैसे 4 बड़े बिंदु उनमें तय करे गए हैं। एक है एनर्जी स्टोरेज सेल, जो स्टोर करते हैं उसमें जो सेल जो होता है उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है, तो उसमें हम अपनी रिसर्च टेक्नोलॉजी पूरी तरह हमारी अपनी है और उसका जो अर्थशास्त्र है वो भी हमारा अपना हो, जिससे कि उसकी कीमत जो है वो कम से कम रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका प्रयोग कर पाए। अब जब हमारे पास वो, हम उसमें थोड़ी सी और जो हम एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे तो हम उसका निर्यात भी करें। दूसरा ईवी एग्रीगेटर्स, इन द सेंस कि एग्रीगेट कैसे करें। अभी खाली हम कारों के बारे में सोच रहे हैं, हम बसों का भी सोचें, हम ट्रक्स का भी सोचें, हमारे जो इनलैंड वाटरवेज है, जो हमारी नदियां हैं उसमें जो वाहन चलते हैं, नाव वगैरह चलती हैं, वो बिजली से चलें, और जो हमारे जो तट है, तट पे जो हमारे छोटे जहाज चलते हैं, मछुआरों के भी जहाज होते हैं, वो सब जो है कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी से चल पाए। तीसरा जो बिंदु है वो मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग है, मटेरियल की जिससे कार बनती है उसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इस तरीके का बनाए जो हमारा अपना हो, जिसमें हमारी आयात पर निर्भरता शून्य हो, और इसके अलावा ये है कि वो सब कुछ देश के अंदर जो हमारे मटेरियल अवेलेबल है उसका अधिक प्रयोग करो। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि जब एक कार की उम्र पूरी हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और उसके अंदर बैटरी भी होगी, उसके अंदर कई चीजें होंगी, तो उसकी फिर रिसाइकलिंग कैसे करें कि उसको दोबारा नई कार बनाए तो ज्यादा से ज्यादा उसी मटेरियल का हम प्रयोग कर सकें और वो कहीं हमको जो है ढेर बने हुए इधर से उधर जो दिखते हैं आजकल वो हमें नहीं दिखे। और जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदेंगे या ईवी खरीदेंगे तो उसकी चार्जिंग उसकी अलग होगी। आज आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, पूरे देश के अंदर 70-80 हजार पेट्रोल पंप है, वहीं से आपको पेट्रोल या डीजल मिलता है। लेकिन ये ऐसी इसको में हमको जो चार्जिंग की फैसिलिटी आपके घर के पास लानी पड़ेगी, जिससे कि रात के समय जब आप सोने चले जाएं तो रात के 12 बजे के बाद और 5 बजे के बीच में तमाम लोगों की घर की बत्तियां बंद हो जाती हैं और बिजली जो है अवेलेबल होती है, तो सस्ते दामों पर आप कैसे अपनी गाड़ी को चार्ज कर सके, अर्थात जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, चाहे वो आप शहर में रहते हो या कस्बे में रहते हो, तो आप अपनी चार्जिंग अपने हिसाब से कर सकें। उसके लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये लोग सब साथ में आएंगे और आकर के जो है इसका व्यवस्था करेंगे। और दूसरा यह है कि उसमें जो फिर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था जो होगी, जो कुल मिला के जो बैटरी वगैरह की, उसका कैसे, तो इससे जैसे कि हम आने वाले समय के अंदर ये 100% पूरा जो साइकिल है ये हमारा अपना भारतीय हो और भारत का जो मौसम है, हमारी जो अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी गर्मी बहुत होती है, सर्दी बहुत होती है, बारिश, वो उसके हिसाब से डिजाइन किया जाए और उसी हिसाब से उसका अर्थशास्त्र।
ई व्हीकल्स में जो तीन बातें जो सामने आती हैं, वो एक तो होती है प्राइस को लेकर के, आपने भी चर्चा की है कि ये सस्ती कैसी हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं। दूसरा है चार्जिंग पॉइंट्स का, कि चार्जिंग पॉइंट्स जो है कैसे अवेलेबल हो जाए। और तीसरा है इसका प्राइस का, लोग थोड़ा सस्ता भी खोजते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग ड्यूल फ्यूल की चाहते हैं कि ड्यूल फ्यूल अगर रहेगा तो चार्जिंग अगर खत्म होता भी है, हालांकि इसकी शुरुआत भी हुई है, तो इसको लेकर के क्या देखते हैं आप?
जो आप ड्यूल फ्यूल की बालिंग कर रहे हैं वो हाइब्रिड कारें होती हैं और वो तो ऑलरेडी काफी चल रही है हमारे देश के अंदर। मैं खुद जो कार प्रयोग करता हूँ वो हाइब्रिड है, अर्थात ये हुआ कि अगर आप चाहें तो वो बिजली से भी चलती है और वो उससे भी चलती है। लेकिन अभी तो यह है कि उनका अर्थशास्त्र थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ी महंगी पड़ती है, कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह विकसित करते हैं और साथ में जो है उसका अर्थशास्त्र जो है वो आकर्षित होता है, तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात यह है कि 100% आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे जहां यात्रा करने जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, सब जगह आपके पास जो है वो उपलब्ध होगा, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे और सस्ते दाम पे आप उसको रिफ्यूल कर पाएंगे, अच्छी तरह उसका डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। अभी जो आप ऐसी कार चाहते हैं जो पेट्रोल डीजल से भी चले और इलेक्ट्रिक चले, उनकी कीमत ज्यादा हो जाती है और आम आदमी के बजट से वो थोड़ा बाहर हो जाती है।
अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो अगले 5 वर्षों में आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए एक रास्ता बताया गया है, इस रास्ते में क्या आपको चुनौतियां भी दिखती हैं?
चुनौतियां तो रहेंगी, क्योंकि आप अभी तक देखिए भारत का इतिहास उठा करके देखें तो जब से जो है पेट्रोल डीजल की कारों का आविष्कार हुआ तब से ही एक व्यवस्था उसी हिसाब से पूरे देश में बनी हुई है, पूरे विश्व में ही बनी हुई है। अब उस व्यवस्था से निकल करके आपको एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सोचने का तरीका अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग होगी, अर्थशास्त्र अलग होगा। अभी आप पेट्रोल लेने जाना पड़ता है, फिर आपने घर के नीचे आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, आपको वहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के पूरा जो व्यवस्था है वो नई व्यवस्था का निर्माण होना है। तो नई व्यवस्था का जब निर्माण करते हैं तो आपको एक तो एक लोग चाहिए जो इस काम के लिए ट्रेन करे गए हों, ऐसे लोग चाहिए जिनके इस पास स्किल हो, ऐसे लोग भी चाहिए जो इस व्यवस्था को मैनेज कर सकें। लाखों की तादाद में नए मैनेजर्स की आवश्यकता पड़ जाएगी और जो सोसाइटी या जो ग्रुप जहां आप रहते हैं या मोहल्ला रहते हैं वहां पे भी उस तरह का जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ कानून आपको उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तो समय भी लगेगा, इसके अंदर ये व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है और जिस डिटर्मिनेशन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और खुले दिल से बढ़ रही है और साथ में जैसे ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि इवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कैसी होनी चाहिए उसके रोडमैप की भी अभी तैयारी हो रही है। ये नहीं कि रोडमैप असली बाद में वो बनेगा, अभी तो यह है कि R&D के अंदर भी हम जो है वो स्वावलंबी बन सकें, हम स्वतंत्र बन सकें। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जो है सरकार बढ़ रही है और कई राज्य सरकारों को भी मैं देख रहा हूं वो अलग अलग अपनी नीतियां इस पर लेकर के आ रहे हैं और उसमें काफी एडिशन भी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देख रहा हूं इसमें काफी उत्साह नजर आता है, कुछ SMEs में भी ये उत्साह नजर आता है। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था परिवर्तन जो है केंद्र सरकार की सोच और उसका नेतृत्व, तमाम राज्य सरकारों की भी सोच और साथ में उसमें जो है वो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर जिस हिसाब से इसमें जो रुचि दिखा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो उपभोक्ता होता है जो कार चलाने वाला है उसमें खासतौर से युवा और युवतियां जिस हिसाब से वो आगे बढ़ के ईवी को अडॉप्ट कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो चुनौती तो है लेकिन मुझे लगता है वो चुनौती का हम ओवरकम कर पाएंगे।
अभी अगर देखें तो ई व्हीकल्स जो हैं वो सड़क पे कम दिखते हैं, तो अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो आपको व्यवहारिक पक्ष इसका क्या दिखता है और कब तक आपको लगता है कि ये जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो रिपोर्ट है, कब तक इसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे?
अगर आप 2022 का डेटा ही उठा करके देखिए तो 2022 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी बेच पाए थे, मेरे ख्याल से लगभग मोटा मोटा 50,000 के करीब, और आज आप देखिए आप 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि दिल्ली शहर में तो ऐसी कंपनियां हैं, टैक्सीज हैं, कंपनियां हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में जब हम काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हम तेजी से आएगा। दूसरी बात होती है जब भी आप कोई नई व्यवस्था या टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो शुरू में समय लगता है, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप उसको गहराई से देखते हैं तो वो फिर उसको लोग अडॉप्ट करने लगते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को लगता है कि शायद वो उनको पेट्रोल डीजल सस्ता पड़ेगा, वो ज्यादा आसान रहेगा, उसके अलावा उनको ये रहेगा कि हम प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं और कुल मिलाकर उसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी होगी। एक्सप्रेस वे या हाईवेज है वहां चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो आप देखेंगे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो है जब ज्यादा इसके नंबर पर ये कंपनियां ये कारें बनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगी तो जाहिर है उसकी जो कीमतें वो भी नीचे आएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों के बीच में भी कुछ कॉम्पिटिशन होगा और कुछ राज्य जो है वो इंसेंटिव ज्यादा देंगे या टैक्स कम चार्ज करेंगे तो उससे भी लोगों का आकर्षण उस तरफ बढ़ेगा।
ऑटोमोटिव क्षेत्र में घरेलू अनुसंधान और विकास क्षमताओं को हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं?
अगर आप ये देखें कि आज से अगर 20 साल का आप इतिहास उठा करके देखते हैं हम कहां थे और आज कहां पहुंच गए हैं। आज दुनिया के अंदर अगर आप देखिए तो आप लैटिन अमेरिका जाइए, आप अफ्रीका जाइए, इवन यूरोप में आज आप जाइए तो आपको भारत की बनी हुई कारें आपको जगह जगह दिखती हैं। भारत में विदेशी कंपनियां जैसे हुंडई अपने सबसे ज्यादा जो कार का निर्माण कर रही है वो कोरिया से ज्यादा आज भारत में करती है और वहां से हमारे यहां से निर्यात भी करती है। भारत की अपनी कंपनी महिंद्रा है, चाहे वो आपको टाटा है, आप विदेशों में जाकर के देखिए, पुर्तगाल में मैं अभी था तो मैंने देखा कि वहां पर भारत की बनी तमाम गाड़ियां आपको सड़कों पर दिखती हैं, भारत की बनी मोटरसाइकिल तमाम सड़कों पर दिखती हैं और खूब दिखती हैं। तो कंपटीशन दे रही हैं जो यूरोप की बनी हुई कारें और मोटरसाइकिल्स है, तो मुझे लगता है कि ये तेजी से इस ओर बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जब भी इस तरह का बड़ा परिवर्तन करते हैं तो थोड़ी चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर जो प्रगति हम देख रहे हैं तो आने वाला जो युग है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है और जहां तक हमारी जो ऑटो कंपनी का है या ऑटो का कुल मिलाकर के जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, शुरू शुरू में इनको हिचक थी। भारत की सभी कार मैन्युफैक्चरर्स जब ये सरकार ये सोच लेके आई तो सब सरकार के दरवाजे पर पहुंच गए, उन्होंने कहा ये तो हम बना ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो सब कन्वेंशनल कार्स के लिए था, पेट्रोल डीजल कार के लिए, हम ये कैसे बना देंगे। लेकिन सरकार ने दृढ़ता दिखाई और सरकार ने कहा भाई हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में जाएंगे, आप भी करते रहिए, चॉइस आपकी है। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज गया और आज लगभग सारी कार मैन्युफैक्चरर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत में लोगों को आगे आना चाहिए, जैसे टेस्ला ने अमेरिका में किया था कि जो जरूरी नहीं है आप कार मैन्युफैक्चरर, लेकिन आप निवेश करिए और अपनी कंपनी बनाएं जहां आपकी शुरुआत ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो, आप कार ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से बनाएं। आज चाइना के अंदर 100 कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं और वो 100 में से ज्यादातर कंपनियां जिसका पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था, उनका पहला कार ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही उन्होंने अपना जीवन शुरू कराया। मुझे लगता है इस तरह की कुछ शुरुआत या आंदोलन या वो भारत में भी हमारे को आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचाना है और एमिशंस को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है और कुल मिलाकर के जो हवा है उसको स्वच्छ करना है और जो जड़ों में समस्याएं चुनौतियां फेस करती हैं उन चुनौतियों को हराना है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही संभव होगा। और उसके लिए आवश्यक है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कारें बनाएं, लेकिन बाकी और लोगों को भी आना चाहिए।
नरेंद्र जी, भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है वो देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक बड़ा योगदान करता है, ऐसे में इस रिपोर्ट को और देश में होने वाले बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, ये रिपोर्ट से एक बात सरकार ने स्पष्ट करी है, उन लोगों के भी जो कारें बनाते हैं पेट्रोल डीजल की बनाते हैं और उन लोगों के भी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अभी नहीं। सरकार ने दिखाया है कि सरकार एक लंबी सोच लेकर के चल रही है। एक तरफ तो सरकार की सोच है कि 2047 तक हम ऊर्जा के दृष्टिकोण से स्वतंत्र हो जाएं, अर्थात एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं, और दूसरी तरफ उसके लिए जो माइलस्टोन्स हैं, जो मील के पत्थर हैं, उसकी भी सरकार बात कर रही है। ये रिपोर्ट एक तरीके से ये मील के पत्थर बनाना के लिए है, ये दिखाती है कि कितनी दृढ़ता से इधर बढ़ा जा रहा है, जिससे कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या आप एक जो है उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकें और इसमें आए। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस हिसाब से सरकार नीतियां लेके आ रही है और दृढ़ता दिखा रही है और साथ में पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप कर रही है और उसके साथ साथ तमाम राज्य सरकारें भी यही काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर कुल मिलाकर मोटर व्हीकल, चाहे वो इलेक्ट्रिक की हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, इसके अलावा बसें, ये कोस्टल व्हीकल, ये सब मिलाकर के इनकी भूमिका जो है आने वाले समय के अंदर हमारा जो GDP है जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल होगा, आज उनके जो शेयर है वो दुगनी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खाली इस तक सीमित नहीं रहेंगे कि आपके पास कार ही इलेक्ट्रिक, तो मुझे लगता है पूरा देश जो है वो उस दिशा में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह के ये रोड मैप R&D रोड मैप आया है और खासतौर से जिस हिसाब से सरकार जो इसमें दृढ़ता दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि इससे तो GDP के अंदर कुल मिलाकर के व्हीकल्स का जो शेयर है जिसमें EV की भूमिका बड़ी होगी वो दुगना होगा।
नरेंद्र जी, आप सुर्खियों में आए और हमारे श्रोताओं को आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत के नेट जीरो लक्ष्य को गति देते ई मोबिलिटी क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।